अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। चाहते हैं अपर विद्या और पर विद्या के ऊपर। आप यूं कह सकते हैं अपर विद्या का अर्थ है लोअर नॉलेज या संसार का ज्ञान, संसारिक ज्ञान, और पर विद्या का अर्थ है हायर नॉलेज या आत्मिक ज्ञान। पहली बात है ज्ञान क्या है। क्या ज्ञान की कोई श्रेणी होती है, कोई ग्रेडिंग होती है? फिर ज्ञान प्राप्त करने से हो क्या जाता है? शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान को पाने के बाद कुछ भी पाना नहीं रह जाता, कुछ भी अनजान नहीं रहता। भक्त अद्वैत में अवगत हो जाता है, अर्थात नॉन ड्यूअलिटी में अवेयर हो जाता है। इस प्रकार के ज्ञान को आत्मिक ज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया। डर भाग जाता है, सारे कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है, वो मानव आनंद में रहते हैं। चाहे संसार में कुछ भी हो रहा हो, ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता, वह सदैव आनंद में रहता है। शास्त्र में संसारिक ज्ञान को अपर विद्या कहा है और आत्मिक ज्ञान को पर विद्या। संसारिक ज्ञान क्या है? जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, जो जीविका चलाने के लिए हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो विद्यालयों में जाकर 10-10 साल अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं केवल पेट को पालने के लिए, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर, कोई अकाउंटेंट, ये जो हम संसार में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं केवल संसार में जीविका चलाने के लिए, संसार में कुछ सालों तक जीने के लिए, पेट को पालने के लिए, रोटी कपड़ा मकान ताकि शरीर को मिलता रहे, जिसने परमात्मा से सीधा संपर्क नहीं स्थापित किया वह अपर और पर विद्या में कोई संबंध नहीं देख सकता। अगर किसी ने भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लिया हो, इफ somebody has established the relationship with God, only then he can see the difference between the lower and the higher knowledge. आप देखिए ना, आप खड़े हुए हैं कहीं सड़क पे, आप बाहर देख रहे हैं, आपको थोड़ी दूर तक नजर आता है वहां गाड़ी आ रही है, लोग चल रहे हैं, कारें आ जा रही हैं। आप अपने घर की पहली मंजिल पे खड़े होकर जाके आपका व्यू बढ़ जाता है, आपकी दृष्टि बढ़ जाती है, आपको दूर तक दिखता है, हो सकता है 100 मीटर आगे तक देख पा रहे हो, अब कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितने लोग चल रहे हैं। अगर आप 2 मंजिला चले गए, अगर आप 7 मंजिल मीनार में खड़े होगा जाके ऊपर, तो आपको दूर दूर तक दिखता है। अर्थात जैसे जैसे आप ऊपर खड़े होते जाएंगे आपको दूर तक दिखना आरंभ हो जाएगा, ठीक है ना? इसी प्रकार से जैसे जैसे आपके ज्ञान की बढ़ोतरी होती जाएगी आपको दूर तक दिखने लग जाएगा। प्रश्न ये उठते, क्या अपर विद्या को छोड़ के, संसार की विद्या को छोड़ के, लोअर नॉलेज को छोड़ के क्या आदमी सीधा अपर विद्या प्राप्त कर सकता है? किसी को क्या आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान सीधा प्राप्त हो सकता है बिना संसार के ज्ञान को प्राप्त किए हुए? हाँ हो सकता है, लेकिन कठिन होता है। किस लिए? क्योंकि इस संसार में जब आप अपने मोह को कम नहीं कर पाते, अपनी इच्छाओं पे काबू नहीं कर पाते, आपके भीतर जो बसे हुए हैं 6 शत्रु, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, जिन्हें शास्त्र षड् शत्रु कहते हैं, जब तक आप उनसे छुटकारा नहीं पाते तब आगे जाने की कोई या आगे जाने का कोई कारण नजर नहीं आता, कोई चांस नहीं बनता, कोई रास्ता नहीं बनता, कोई पगडंडी नहीं खुलती, दिखती नहीं है। पहले यह समझना है कि यह संसार क्या है, इसका हमारे साथ संबंध क्या है। कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये। आपने गाड़ी खरीदी है कि नहीं, पर्पस क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए। आपने गाड़ी गैराज में खड़ी करी, रात को सोने के नींद नहीं, उठ के नीचे देखने आ गया गैराज में, भैया क्या पड़ा हुआ है, देख क्या गाड़ी में कैसी लग रही है, थोड़ी धूल गिरी आपने कपड़ा मार दिया। आपका ध्यान गाड़ी पे जा रहा है, आप रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं, आपका ध्यान है कि लोग मेरी गाड़ी को कितनी बार देख रहे हैं, मेरे मित्रगण क्या बोलते हैं, मेरे संबंधी क्या बोलते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, दोस्त क्या बोलते हैं, समाज क्या बोलता है, कौन वाहवाही करता है, कौन ईर्ष्या में जलबन बैठता है। तो संसारिक वस्तुएं हमें आनंद नहीं दे रही हैं, केवल सुख दे रही हैं, रहती हमारे पल के लिए, पल भर के लिए। भाई आपने नई गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी आपको सुख दे रही है, ये जरूरी तो नहीं है वो गाड़ी दूसरे व्यक्ति को सुख देगी। दूसरे व्यक्ति बोलते नहीं मेरे को तो टीवी चाहिए, लेटेस्ट मॉडल चाहिए, वो उसमें सुखी है। इसका मतलब सुख इन सामान में नहीं है। अगर गाड़ी में सुख होता जो गाड़ी दोनों व्यक्तियों को एक समान सुख देती, अगर टीवी में सुख होता तो एक समान सुख देती दोनों व्यक्तियों को, लेकिन नहीं, दो व्यक्ति दोनों अलग लोगों को अलग प्रकार का सुख दे रही हैं। आपका समाज में क्या स्थान है, आपका परिवार में क्या स्थान है, आपका सृष्टि में क्या स्थान है, व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, विद द सोसाइटी, विद द फैमिली, विद द नेचर, विद द कॉस्मोस। इतना जानने से आपके अंदर समझ आ जाएगी कि हम संसार में जो सुख जो आनंद खोज रहे हैं वो संसार के वस्तुओं में नहीं है, कोई संबंधों में नहीं है। हम संसार में उलझते जा रहे हैं, हमारा सारा समय इसे सुलझाने में लग जाता है। आध्यात्मिक अभ्यास का हमें समय नहीं मिलता। जरा विचार कीजिएगा, आपका कोई मित्र आपके रूठ गया, बड़ी अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी, आपके रूठ गया, आपका सारा ध्यान सारा फोकस वहां चला गया। रात को सोने जाएंगे आप दिमाग में बात चलती रहेगी, सुबह उठते दिमाग में बात चलती रहेगी, दिन में सैकड़ों बार आपके दिमाग में वो बात आएगी, मेरा इतना अच्छा मित्र था, पता नहीं क्या हो गया, मेरे से बात नहीं करता, तू चला गया, किसी से आपका झगड़ा हो गया, तू तू मैं हो गई, जो शब्द दूसरे व्यक्ति ने आपको बोले आपके पसंद नहीं आए, वो शब्द बार बार आपके कानों में शोर जाते रहेंगे, कौन देते जाएंगे, गरजते रहेंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। संबंधों में थोड़ी ठेस लग गई, वो ठेस आपकी रात की नींद हराम कर देती है, दिन का चैन ले लेती है। संबंधों में थोड़ी ठेस लग गई, उसका असर आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है, आपका बहुत ज्यादा समय वह ले रहा है, आपकी जेब में मार पड़ गई, पॉकेट में मार पड़ गई, धन का नुकसान हो गया, वो चोट भी आपको सताएगी। सच बात है या नहीं? मैंने सुना था बचपन में, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, अगर आपका पैसा खोया कोई चीज नहीं खो गई, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, कुछ खो दिया आपने. इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट. और अगर आपका चरित्र खराब हो गया सब कुछ लुट गया आपका. लेकिन इस संसार में हो क्या रहा है? हमारे संबंधों में समस्या है, हमारे संपत्ति में समस्या है, हमारे पैसों में समस्या है, हमारे भोजन में समस्या है. संबंध बाहर के तो छोड़िए, घर के अंदर देख लीजिए. पति पत्नी में तू तू मैं, बाप बेटे में तू तू मैं, माँ बेटी में तू तू मैं. हर व्यक्ति अपनी बात मनाने को तैयार है, डंका पीट पीट के कहता है मेरी बात ठीक है. फिर दिन भर का सारा समय उन बातों को सोचने में खराब हो जाता है. तो आप आध्यात्मिक या आत्मिक बातों के बारे में कब सोचेंगे, कब प्रयास करेंगे, कब अभ्यास करेंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे? टाइम ही नहीं है. हमारा टाइम कहाँ जा रहा है? व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स. बाकी टाइम बचा तो टीवी में बैठ के गुजार दिया हमने. टाइम बचा कहाँ है? तो किस प्रकार से आप पर विद्या के अधिकारी बन सकते हैं? डू यू क्वालिफाई टू गेट द आत्मिक नॉलेज एट ऑल? फूल चुनने आए थे बागे बहार में. एक बगीचा है, वह फूल उठाने आए थे. ये पूरा संसार एक बगीचा है. फूल चुनने आए थे बागे बहार में, कांटों में अपना दामन फंसा के रह गए. अड़चन कहां से आ रही है? अड़चन आ रही है एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षा. पहले हम ये सोचते हैं संसार के वस्तु हमें सुख देंगी, लेकिन कुछ घंटों के बाद वो सुख खत्म हो जाता है. वी आर डिसअपॉइंटेड. हम सोचते हैं हमारा ये रिश्ता है, हमारा ये नाता है किसी के साथ हमें सुख देगा, उसमें ठेस पहुंच जाती है. हमारी अपेक्षा, हमारी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती, अपेक्षा पे खरे नहीं उतरते. वी गेट डिसअपॉइंटेड. शास्त्र कहते हैं व्हेन देयर इज नो डिसअपॉइंटमेंट इन योर माइंड, व्हेन देयर नो कंप्लेन, ए माइंड फ्री फॉर कंप्लेन इज द अबोड ऑफ पीस. जिस मन में शिकायतें नहीं है, जिस मन में काम क्रोध मोह लोभ मद मस्तक नामक छह शत्रु नहीं है, उनको पार कर लिया है, उसके मन में शांति छा जाती है. उसको कहते हैं मानसरोवर, उसी को कहते हैं प्रशांति निलयम, उसी को कहते हैं एबोड ऑफ एटर्नल पीस. और जब आप के मन में शांति आती है तब आप ऊपर उठना आरंभ करते हो. तब आप पर विद्या की ओर जा रहे हैं. विचार कीजिएगा, हमने सारा समय लगा दिया संसार के ज्ञान को प्राप्त करने में. अकाउंटेंट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईटी में जाना है. ठीक है, आपको रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ व्यवसाय चाहिए, कुछ काम चाहिए. बाकी जो समय बचा आपने व्यतीत कर दिया टेलीविजन में, व्हाट्सएप में, मोबाइल फोन में, फेसबुक में. बाकी जो समय बचा आप हाया करते रह गए, अपने रिश्तों को खोजते रह गए. समय कहां मिला आपको परमात्मा के पास जाने के लिए? इसीलिए कहते हैं लोअर नॉलेज जो है, जो संसार की नॉलेज है, वो प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन अब संबंध को समझिए, आपको जो गाड़ी दी गई है पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए, उसमें इतनी अटैचमेंट की जरूरत नहीं है, अहंकार नहीं चाहिए उसमें, लालसा नहीं चाहिए। आपका संबंध संसार से क्या है, उस संबंध को समझिए और उससे ऊपर उठिए। जब आप ऊपर उठना आरंभ करेंगे ना, तब आपको सब कुछ क्लियरली नजर आने लग जाएगा। विचार करने की बातें ही सारी है, फिर आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे, फिर आपके मन में शांति का साम्राज्य छाने लग जाएगा। इसीलिए कहा गया, मानव आनंद में रहता है चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता, वह सदैव आनंद में रहता है। एक मृत्यु का डर खा जाता है निदान को, मेरा सब कुछ खो जाएगा, मैंने अपने सारी जिंदगी लगा दी चीज कमाने में, संपूर्ण जीवन मैंने बहुत मेहनत करी है, अब मैं अपने कर्मों से अपना अपनी पहचान बनाना चाहता था, लेकिन यमराज ने दस्तक दे दी, घर में आके जाना पड़ेगा, nobody can escape। विचार कीजिएगा आप, एक तो मृत्यु में सब खो जाएगा, वो डर खाया जा रहा है, दूसरा जो मनुष्य प्रकृति के नियम को समझता है वह अपनी पहचान अपने शरीर से अहम से नहीं बनाता, वह अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाता है, और मृत्यु डरता नहीं है। मरते तो दोनों ही हैं, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। पहला इंसान संसार को पकड़े हुए है, ये शरीर को छोड़ा, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा पति, हाय मेरे बाकी संबंधी, और दूसरा व्यक्ति जो संसार के संबंधों को समझता है, ही अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, वह प्रेम के साथ संसार को त्याग देता है। पूरी जिंदगी हम भागते रहते हैं पैसे के पीछे, सच बात है ये, जितना भी मिल जाए कम लगता है, लेकिन कभी आपने सोचा खूब कमाया हमने क्या हीरे क्या मोती, खूब कमाया हमने क्या हीरे क्या मोती, खूब कमाया हमने क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे यारों कफन में जेब नहीं होती। जब जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा, खाली हाथ जाना पड़ेगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में आपके, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जो कर्म किया वही जाएंगे, संसारिक कोई भी वस्तु आपके साथ नहीं जाएगी, चाहे आप कितनी ही प्रिय हो, चाहे आपने कितनी मेहनत से कमाई हो, वह आपके साथ नहीं जाएगी। फिर किस लिए लगे हुए हैं, पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं किस लिए, विचार कीजिएगा आप। इसलिए कहा गया कि आप अपना ध्यान संसार पे नहीं, संसार को बनाने वाले पे लगाएं। जो ज्ञान हम संसार में पा रहे हैं वो ज्ञान नहीं है। अरे मंदिरों में गद्दी पे बैठे हुए जो लोग गोष्ठी कर रहे होते हैं, जो आपको प्रवचन दे रहे होते हैं, वो भी मोह माया में फंसे होते हैं। हम बोलते क्या ज्ञान की बात करी है, उसके मन में भी द्रव्य चल रहा होता है, उसके मन में भी पैसा चल रहा होता है। ये सारे प्रवचन सुनने में अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिस में लाने मुश्किल है, अभ्यास करना पड़ता है। मैं पूरी गीता को पढ़ के अपने मस्तिष्क में घोट के रख दूं, पी जाऊं उसको, मैं शास्त्रों के साथ जो श्लोक रट लूं, और मौका पढ़ने में आप 100 लोग के आगे जो उड़ेल दूं, वो ज्ञान नहीं है, वो मेमोरी पावर है। वो ज्ञान रट्टी भर नहीं है, इवन नॉट एन आयोटा। रामायण को पढ़ा, गीता को पढ़ा, महाभारत का बना, वहां की सारी कहानियों को पढ़ा, उनको अपने दिमाग में स्टोर कर दिया, मौका आने पर सही समय में उनको लोगों को सुना दिया, बस। तो व्हाट ए बिग डील। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इंटरनेट में जाइए, वहां क्लिक कीजिए, गूगल में जाइए, आपको मिल जाएगी। वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सर्वर, गूगल के कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, आपने उसको एक्सेस किया है, वो आपने पढ़ ली। उसी प्रकार से हमने जो रामायण को पढ़ा, गीता को पढ़ा, हमने सारे अध्ययन कर करके अपने दिमाग में बिछा दिए, फिर बोल दिए, तो व्हाट ए बिग डील। लेकिन जो रामायण में लिखा है उसको प्रैक्टिस किया हमने, जो गीता में लिखा है उसको प्रैक्टिस किया, जो भागवत में लिखा है उसको प्रैक्टिस किया। डिड वी पुट इनटू प्रैक्टिस? नो। दो शब्द पढ़ के, गीता का केवल एक श्लोक पढ़ के ही अगर उस पर हमने जीवन गुजार दिया, हमारी मुक्ति निश्चित है, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम 700 श्लोक पढ़ना चाहते हैं ताकि हमें सुनाने में आनंद आए, हमारे अहंकार को हवा मिलती है। विचार कीजिएगा, डू वी रियली वॉन्ट पर विद्या? क्या हम हायर नॉलेज, आत्मिक ज्ञान चाहते भी हैं या नहीं? संसार में रहते हुए भी हमें प्राप्त करना है आध्यात्मिक ज्ञान। अगर अगर हिमालय की चोटी में जाके बैठ जाएं तब भी संसार आपके मन में घूमता रहेगा। अगर आप हिमालय की चोटी में अकेले बैठे हुए हैं, ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे ना, तब भी आपके मन में आपका घर, आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपके संबंधी, आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं जागृत होंगी। दे विल पॉप अप। जंगल में बैठ जाए, घनघोर जंगल में बैठ जाए, वनवास ले लें, तब भी संसार आपके अंदर रहेगा। इससे तो अच्छा है, इससे बेहतर है कि आप संसार में रहते हुए, संसार में अपने कर्मों को करते हुए, अपने ड्यूटीज को निभाते हुए, आप उससे ऊपर उठ जाएं, जैसे कमल का फूल तालाब में, सरोवर में रहते हुए भी सरोवर से बाहर आ जाता है, उनकी पंखड़ियों के ऊपर जल की एक बूंद भी टिक के नहीं रहती। उसी प्रकार से संसार में रहते हुए ही अपने आप को ऊंचा उठाएं, ताकि संसार की कोई भी वस्तु, संसार का कोई भी मोह, संसार का कोई भी अटैचमेंट, कोई भी लोभ, कोई भी वासना हमारे भीतर ना हो, हम उससे ऊपर उठ जाएं। उसको कहा गया, जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब हम इस लेवल तक पहुंच जाएं, जब हम इस तल तक पहुंच जाएं, तब हमारे मन के अंदर तरंगे उठनी बंद हो जाएंगी, हमारा मन शीतल हो जाएगा, हमारा मन शांत हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली आपको ऊपर जाने का रास्ता दिखेगा, तब आपको आत्मिक ज्ञान की किरणें दिखनी शुरू होंगी, आप किरणों के द्वारा उसके स्वर तक पहुंच सकते हैं। उसे कहा गया पर विद्या। जय श्री सायराम।